एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल,
समकालीन कथा साहित्य की दुनिया में, मतलब आजकल जो कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उनकी दुनिया में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज की कहानियां हमारे समय को, हमारे दौर को कैसे पकड़ती हैं और क्या चीज है जो उन्हें खास बनाती है।
बिल्कुल, और इस सफर में हमारे गाइड होंगे प्रोफेसर रॉबर्ट ईगलस्टोन।
हाँ,
हम उनकी दो अहम किताबों के आधार पर ये पड़ताल करेंगे, कंटेम्पररी फिक्शन और कंटेम्पररी फिक्शन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा,
ये किताबें मतलब हमें आज के उपन्यासों को देखने का एक नया चश्मा देती हैं, एक नया नजरिया।
सही कहा, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज के दौर में इस विषय पर बात करना जरूरी क्यों है? मतलब कहानियां तो हमेशा से ही रही हैं।
देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास का जरिया नहीं होती। वो हमारी जिंदगी का आईना होती है एक तरह से, और आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है।
हाँ वो तो है।
सोचिए जरा, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, रिश्ते बदल रहे हैं, पहचानें बदल रही हैं।
बिल्कुल,
ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, और आज का जो लिटरेचर है वो इन्हीं मुश्किलों को, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में, उन पर सोचने में हमारी मदद करता है।
हाँ ये बात तो है, चाहे कोई बेस्ट सेलर नॉवल हो या कोई वेब सीरीज की कहानी या फिर ऑनलाइन छोटी कहानियां,
हाँ
ये सब कहीं ना कहीं हमें अपने टाइम को समझने में मदद करती हैं। तो ये चर्चा उन सब के लिए है जो साहित्य में रुचि रखते हैं या कल्चर को समझना चाहते हैं या बस अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और गहराई से देखना चाहते हैं।
बिल्कुल सही।
चलिए शुरुआत करते हैं रॉबर्ट ईगलस्टोन से। ये कौन है, मतलब हमें इनकी बातों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? साहित्य पर तो बहुत लोग लिखते हैं।
हाँ, तो रॉबर्ट ईगलस्टोन, देखिए वो कोई मामूली नाम नहीं है। वो लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल होलोवे कॉलेज में प्रोफेसर है।
अच्छा,
समकालीन साहित्य और विचार के, और काफी समय से, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए, वो इसी फील्ड में है, साहित्यिक आलोचना, कंटेम्प्रोरी थ्योरी।
हाँ हाँ,
और खासकर जो ऐतिहासिक सदमे हैं जैसे होलोकास्ट,
हाँ
उनका साहित्य पर क्या असर हुआ, इस पर उनका बहुत गहरा काम है।
हाँ,
तो अनुभवी है और विशेषज्ञता भी।
लेकिन उनकी खासियत क्या है, मतलब क्या चीज उनके नजरिए को दूसरों से अलग बनाती है?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लिटरेचर को सिर्फ एक डिब्बे में बंद करके नहीं देखते। वो उसे फिलॉसफी से, कल्चरल स्टडीज से, हिस्ट्री से, इन सब से जोड़कर देखते हैं।
अच्छा, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है।
बिल्कुल, और खास तौर पर जैसा मैंने कहा, वो इस चीज के एक्सपर्ट हैं कि कहानियां और उपन्यास कैसे मुश्किल नैतिक सवालों से या होलोकॉस्ट जैसी जो बड़ी त्रासदियां हैं उनसे कैसे जूझते हैं। उनका काम ये दिखाता है कि लिटरेचर सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वो समाज के जख्मों को समझने का, उन पर बात करने का भी एक जरिया है।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ स्टाइल या टेक्निक नहीं बल्कि उसके पीछे का मतलब, समाज से उसका रिश्ता, उसे भी टटोलते हैं।
बिल्कुल, और उनकी एक और खूबी है, वो है मुश्किल एकेडमिक आइडियाज को भी आम पढ़ने वाले के लिए आसान बनाना, समझने लायक बनाना।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, वो मानते हैं कि कथा साहित्य सिर्फ कुछ इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी सच्चाई की समझ, जिंदगी में मतलब ढूंढने की कोशिश, इन सबका एक जरूरी हिस्सा है। तो उनके नजरिए में एकेडमिक गहराई भी है और क्लासरूम का प्रैक्टिकल अनुभव भी।
ठीक है, तो अब आते हैं उनकी किताबों पर। इन किताबों का मेन मकसद क्या है, क्या देना चाहती हैं ये पाठक को?
देखिए, ईगलस्टोन का लक्ष्य कोई टॉप 10 लिस्ट बनाना नहीं है कि भाई ये आज के बेस्ट नॉवेल्स हैं, बल्कि वो हमें एक तरह का कह सकते हैं औजारों का बक्सा या एक फ्रेमवर्क देना चाहते हैं।
फ्रेमवर्क
किस लिए? जिससे हम लगभग 1989-90 के बाद, मतलब जब बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया है उसे बेहतर समझ सके।
यानी ये किताबें हमें सिखाती हैं कि इन नई तरह की कहानियों को पढ़ना और समझना कैसे है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस दौर के साहित्य को समझने के लिए पुराने पैमाने शायद काफी ना हो।
क्यों?
क्योंकि ये साहित्य जिन हालात से पैदा हुआ है,
हाँ,
वो बहुत अलग हैं। जैसे शीत युद्ध का खत्म होना, फिर डिजिटल क्रांति, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज की चिंता, 9/11 जैसी घटनाएं।
हाँ बिल्कुल,
ये सब अपने आप में अनोखे हैं। तो ये किताबें उन कॉमन थीम्स, कहानी कहने के नए तरीकों और नैतिक चिंताओं का विश्लेषण करती हैं जो इस दौर के उपन्यासों की पहचान बन गए हैं।
और उनका सबसे मुख्य तर्क क्या है, मतलब सबसे दिलचस्प बात क्या लगी आपको इन किताबों में?
सबसे अहम बात ईगलस्टोन ये कहते हैं कि समकालीन कथा साहित्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो हाल में ही लिखा गया है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि ये हमारी आज की जो अनोखी परिस्थितियां हैं उनकी एक खास प्रतिक्रिया है। ये सिर्फ नया नहीं है, ये हमारे समय का प्रोडक्ट है और ये पोस्ट मॉडर्निज्म से भी आगे की चीज है।
पोस्ट मॉडर्निज्म, वो जो एक दौर था जिसमें बहुत विडंबना, खेल।
हाँ बिल्कुल, जिसमें सच को नकारना, नियमों को तोड़ना, उस पर ज्यादा जोर था। ईगलस्टोन कहते हैं कि अब चीजें उससे आगे बढ़ रही हैं।
तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, ईगलस्टोन का सवाल यह है कि आज की कहानियों को वाकई आज का क्या चीज बनाती है।
बिल्कुल।
और ये कहानियां हमें इस अनिश्चितता, इस सदमे, इस तेजी से बदलते वक्त को कैसे समझने में मदद कर सकती हैं?
बिल्कुल सही पकड़ा। और उनकी गहरी अंतर्दृष्टि ये है कि समकालीन कथा साहित्य हमारे आज के जीवन को समझने के लिए एक आईना भी है और एक प्रयोगशाला भी।
आईना और प्रयोगशाला।
हाँ, और इसमें अक्सर एक तरह का नैतिक मोड़ या नई ईमानदारी दिखाई देती है। मतलब अब लेखक सिर्फ दुनिया का मजाक उड़ाने या भाषा से खेलने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो ईमानदारी से मुश्किल नैतिक सवालों से, रिश्तों की सच्चाई से, दुनिया की ठोस हकीकतों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारे वक्त के जरूरी मुद्दों पर सोचने का एक गंभीर तरीका है।
ठीक है, तो चलिए इसे और खोलते हैं। ये समकालीन कथा साहित्य आखिर अलग कैसे है? आपने कहा कि ये सिर्फ नया नहीं है और ये पोस्ट मॉडर्निज्म से आगे जाता है। इस आगे जाने का क्या मतलब है? पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा क्या था जो अब बदल रहा है?
हाँ, यही बात दिलचस्प होती है। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म का एक दौर था, उसमें कटाक्ष, विडंबना, बड़ी आइडियोलॉजीज का मजाक उड़ाना, ये मानना कि कोई एक सच नहीं होता, ये सब बहुत आम था।
हाँ बिल्कुल, लेखक अक्सर नियमों को तोड़ते थे।
हाँ, किरदारों को सपाट बनाते थे, भाषा से खेलते थे। लेकिन ईगलस्टोन कहते हैं कि अब इसमें एक बदलाव आ रहा है, शायद इसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहें, या जैसा आपने कहा, नई ईमानदारी।
नई ईमानदारी, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब यह है कि लेखक पोस्ट मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल तो अब भी करते हैं, जैसे कहानी को तोड़ मरोड़ कर कहना, अलग अलग नजरियों से बात कहना। लेकिन अब उनका जोर सिर्फ खेल या व्यंग्य पर नहीं है, अब वे नैतिकता, प्रामाणिकता यानी असली होने पर, लोगों के बीच जुड़ाव और दुनिया की असलियत से गंभीरता से जूझने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
अच्छा।
मिसाल के तौर पर जेडी स्मिथ हैं या डेविड फॉस्टर वॉलेस थे, ऐसे लेखक समाज की मुश्किल सच्चाइयों को दिखाते हैं, लेकिन उनके लेखन में एक गहरी भावनात्मक और नैतिक संजीदगी भी होती है। वो सिर्फ चीजों को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश भी करते दिखते हैं।
अच्छा, तो मतलब अब सिर्फ दुनिया कितनी बिखरी हुई है ये दिखाना काफी नहीं, बल्कि उस बिखराव के बीच कुछ सार्थक खोजने की कोशिश भी हो रही है। तो फिर इस समकालीन एहसास को और क्या चीजें परिभाषित करती हैं? किरदारों के बारे में क्या? क्या हमारे अंदर का स्व या पहचान, उसको देखने का नजरिया भी बदला है?
बिल्कुल बदला है। ईगलस्टोन जिसे खंडित स्व कहते हैं, उस पर बहुत जोर देते हैं।
खंडित स्व?
हाँ, यानी अब पुराने उपन्यासों की तरह सीधे, सापाट, स्थिर, पूरी तरह समझ में आने वाले किरदार कम मिलते हैं। आज की कहानियों में पहचान या सेल्फ कोई ठोस चीज नहीं है, वो तरल है, लिक्विड है, लगातार बदलती रहती है।
तरल पहचान, ये कुछ वैसा जैसा हम आजकल महसूस करते हैं, कभी लगता है हम ये हैं, कभी वो।
हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए, हमारी पहचान बनती किससे है? हमारी यादों से, और यादें कितनी भरोसे लायक होती हैं।
हाँ ये तो है।
हमारी संस्कृति से, हमें लगे सदमों से, समाज हमसे क्या उम्मीद रखता है, इन सब से, ये सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं, जो कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होती। जैसे कोई पजल हो जिसके टुकड़े हमेशा बदलते रहते हों। काज़ुओ इशिगुरो के उपन्यासों के किरदार सोचिए, द रिमेन्स ऑफ द डे का स्टीवंस, जो पूरी जिंदगी एक मुखौटा पहने रहता है, या नेवर लेट मी गो के क्लोन, जिनकी इंसानियत पर ही सवाल है।
हाँ।
पहचान अक्सर एक तरह का अभिनय या प्रदर्शन बन जाती है, कोई गहरी अंदरूनी सच्चाई नहीं। उपन्यास एक तरह की लैब बन जाते हैं, जहां लेखक ये सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ ऐसी दुनिया में जहां पहचान की पुरानी गारंटियां खत्म हो गई हैं।
ये ठंडित स्व वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है, खासकर आज के दौर में जब हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन पहचानें भी अलग अलग हो सकती हैं। अच्छा, किरदारों से आगे बढ़कर समय और जगह के बारे में क्या? आजकल हमें अक्सर लगता है कि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, या फिर सब कुछ एक साथ हो रहा है? क्या कहानियां इस एहसास को पकड़ पाती हैं? आपने वर्तमानवाद का जिक्र किया था।
हाँ, ये एक और अहम पहलू है। समकालीन कथा साहित्य अक्सर समय के साथ हमारे इस अजीब से रिश्ते को दिखाता है। ईगलस्टोन वर्तमानवाद की बात करते हैं।
वर्तमानवाद,
ये वो एहसास है कि हम मानो एक लगातार चलने वाले अभी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम इतिहास की किसी लंबी कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अतीत के साये हमें परेशान करते हैं और भविष्य की चिंताएं सताती हैं।
हाँ, जैसे 24 घंटे न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पर सब कुछ तुरंत।
बिल्कुल,
ये सब हमें एक अंतहीन वर्तमान में फंसा हुआ महसूस कराता है।
और लेखक इस एहसास को कहानी में कैसे दिखाते हैं? उनवी अक्सर समय के साथ खेलते हैं। कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, कभी वो अतीत में चली जाती है, कभी भविष्य में कूद जाती है, कभी एक ही वक्त में कई कहानियां साथ चलती हैं।
अच्छा,
समय को टुकड़ों में दिखाया जाता है, जैसे जेनिफर ईगन की किताब है अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड, उसमें एक पूरा चैप्टर पावर पॉइंट स्लाइड्स में है।
अरे वाह।
हाँ, या अली स्मिथ की हाउ टू बी बोथ, जिसे आप दो अलग अलग क्रम में पढ़ सकते हैं। डेविड मिचेल की क्लाउड एटलस तो सदियों और महाद्वीपों में फैली कहानियों को एक साथ बुन देती है। ये सब तरीके हैं हमारे आज के खंडित, तेज रफ्तार लेकिन अक्सर दिशाहीन महसूस होने वाले समय के अनुभव को पकड़ने की कोशिश।
और जगह के बारे में, ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को छोटा कर दिया है, क्या इसका भी असर दिखता है?
बिल्कुल, अब किरदार अक्सर एक जगह टिके नहीं रहते, वो यात्रा कर रहे होते हैं, प्रवासी होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के बीच जी रहे होते हैं।
हाँ, जैसे बड़े शहरों में होता है।
बिल्कुल, अलग अलग देशों, पृष्ठभूमि के लोग साथ रहते हैं। चिममांडा ंगोजी अदिची की अमेरिकाना जैसी किताबें इसी अनुभव को दिखाती हैं। तो कहानी का रूप सिर्फ समय को ही नहीं बल्कि बदली हुई जगह की समझ को भी दर्शाता है। दुनिया सिमट गई है लेकिन साथ ही ज्यादा जटिल भी हो गई है।
ठीक है, किरदारों और समय जगह की बात हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे समकालीन उपन्यास इतिहास की तरफ भी बहुत देखते हैं। अतीत की कहानियां क्यों कही जा रही हैं? आपने इतिहास लेखन मेटाफिक्शन का जिक्र किया था, ये क्या चीज है?
ये बहुत अहम सवाल है। समकालीन कथा साहित्य का इतिहास के साथ रिश्ता थोड़ा पेचीदा है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अतीत में क्या हुआ था, बल्कि ये इस पर सवाल उठाता है कि इतिहास बताया कैसे जाता है।
अच्छा,
हाँ, यहीं पर इतिहास लेखन मेटाफिक्शन की धारणा काम आती है। ये ऐसे उपन्यास होते हैं जो जानबूझकर काल्पनिक होते हुए भी अतीत की घटनाओं पर आधारित होते हैं।
मतलब हिस्टोरिकल नॉवल जैसे, पर कुछ अलग।
हाँ, अलग इसलिए क्योंकि ये पाठक को लगातार याद दिलाते रहते हैं कि भाई ये कहानी है, इतिहास का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं। ये सच और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देते हैं। कभी कभी लेखक असली दस्तावेजों या तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें कहानी में इस तरह पिरोते हैं कि पाठक सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम इतिहास को कितना जानते हैं और वो जानना कितना भरोसेमंद है।
अच्छा,
जैसे WG सेबाल्ट की किताबें हैं, वो कहानी, यादों और तस्वीरों को मिला देती हैं, खासकर होलोकॉस्ट जैसे दर्दनाक इतिहास को दिखाते हुए।
यानी इतिहास सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं बल्कि उसे कैसे याद किया जाता है और कैसे सुनाया जाता है, ये भी अहम हो जाता है।
बिल्कुल, और इसमें सदमे और स्मृति का बहुत बड़ा हाथ है। उन आवाजों को सुनना जिन्हें इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली, यहीं पर ईगलस्टोन का होलोकॉस्ट स्टडीज का अनुभव काम आता है। वो कहते हैं कि कथा साहित्य एक तरह की सांस्कृतिक चिकित्सा का काम कर सकता है।
सांस्कृतिक चिकित्सा?
हाँ, कल्चरल थेरेपी। ये समुदायों को उन सामूहिक सदमों से उभरने और उन अनुभवों को समझने में मदद करता है जिन्हें सरकारी इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है। जैसे कोल्सन व्हाइटहेड की अंडरग्राउंड रेल रोड अमरीका में गुलामी के इतिहास को एक काल्पनिक तत्व के साथ जोड़कर दिखाती है।
ये तो बहुत गहरा पहलू है। अब एक और चीज जो आज हमारी जिंदगी पर हावी है, टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन, इंटरनेट, AI, ये सब कहानियों में कैसे नजर आते हैं?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें,
हाँ,
तो तकनीक सिर्फ कहानी का एक विषय ही नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो कहानी कहने के ढंग यानी रूप को भी बदल रही है।
हाँ, कई लेखक अपनी कहानियों में ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी वगैरह को शामिल करते हैं।
हाँ, जैसे आपने जेनिफर ईगन या गैरी स्टिनगार्ड का जिक्र किया।
बिल्कुल, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी में इन चीजों का जिक्र करने तक ही सीमित है?
नहीं,
तो फिर
इससे कहीं ज्यादा गहरा असर है। उपन्यास ये पड़ताल कर रहे हैं कि तकनीक हमारी सोच को, हमारे रिश्तों को, हमारी पहचान को और यहाँ तक कि हम कहानी से कैसे जुड़ते हैं, इन सबको कैसे बदल रही है। क्या हमारी चेतना अब पहले जैसी है? क्या डिजिटल दुनिया में रिश्ते वैसे ही बनते और निभाए जाते हैं? एक नई तरह के यथार्थवाद की बात हो रही है जिसे डिजिटल यथार्थवाद कह सकते हैं।
डिजिटल यथार्थवाद?
हाँ, समकालीन कथा साहित्य ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस डिजिटल युग में इंसान होने का मतलब क्या है और कहानी कहने के पुराने तरीकों को इन नई सच्चाइयों के लिए कैसे बदला जाए।
वाकई तकनीक ने तो सब कुछ बदल दिया है। अच्छा, एक और बड़ी बात जो आपने शुरू में कही थी, ईगल स्टोन नैतिकता पर बहुत जोर देते हैं, ये नैतिक मोड़ क्या है? क्या कहानियां अब उपदेश देने लगी हैं?
नहीं, उपदेश देना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना, यही बात आकर्षक है। ईगल स्टोन इमैनुएल लेविनास जैसे दार्शनिकों के विचारों का सहारा लेते हुए कहते हैं कि जब हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो हम दरअसल एक दूसरे यानी अधर का सामना कर रहे होते हैं।
दूसरे का सामना?
हाँ, एक ऐसी सोच, एक ऐसी दुनिया जो हमसे अलग है। किताब हमें उस दूसरे के नज़रिए को समझने, उसके सुख दुख में शामिल होने, सहानुभूति महसूस करने का मौका देती है।
तो पढ़ना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं बल्कि एक नैतिक अनुभव भी है।
हाँ, ईगल स्टोन यही मानते हैं। समकालीन उपन्यास अक्सर आसान नैतिक फैसले नहीं सुनाते कि ये सही है वो गलत है। वे हमें जटिल उलझी हुई नैतिक दुविधाओं के बीच ले जाते हैं जहां कोई सीधा जवाब नहीं होता। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि दूसरों के प्रति, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमसे अलग हैं या जिन्होंने दुख झेला है, हमारी क्या जिम्मेदारी है।
अच्छा,
इस लिहाज से कथा साहित्य हमारी नैतिक कल्पना को प्रशिक्षित करने का एक मैदान बन जाता है। इशिगुरो के उपन्यास सोचिए या यान मैकेवन की अटोनमेंट, जहां कहानी कहने के नैतिक दांवपेच ही कहानी के केंद्र में है।
और ये नैतिकता सिर्फ इंसानी रिश्तों तक ही सीमित है या?
नहीं, इसका दायरा और बड़ा है। ये हमारे शरीर के अनुभवों, खुशी, दर्द, बीमारी को भी समेटती है। और आजकल तो पर्यावरण संकट पर भी बहुत लिखा जा रहा है।
हाँ, क्लाइमेट फिक्शन।
बिल्कुल, क्लाइफाई, रिचर्ड पावर्स या बारबरा किंगसोल्वर जैसे लेखक इस तरह का साहित्य लिख रहे हैं। और ये बात गांठ बांधने लायक है, कहानी कहने के जो नए नए तरीके लेखक अपना रहे हैं वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है।
अच्छा,
वो इन जटिल नैतिक, सामाजिक और अस्तित्वगत सवालों से जूझने के लिए जरूरी हो गए हैं।
वाह, तो ये सारे धागे मिलकर समकालीन कथा साहित्य की बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। अगर हमें इन सब बातों का निचोड़ निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी?
बिल्कुल, चलिए संक्षेप में देखते हैं। पहली और सबसे अहम बात, समकालीन कथा साहित्य की पहचान इस बात से होती है कि वो हमारे समय से, मतलब शीत युद्ध के बाद के दौर, डिजिटल युग, ग्लोबलाइजेशन, ऐतिहासिक सदमों, इनसे गहराई से जुड़ा हुआ है।
ये सिर्फ हाल का नहीं है, ये केवल अभी लिखा जा सकता था।
बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे अंदर के स्व या पहचान का विचार, वो अब बदल गया है, स्थिर नहीं है, खंडित है, लगातार बनता बिगड़ता रहता है। यादें, संस्कृति, सामाजिक दबाव, ये सब उसे आकार देते हैं।
पहचान एक पक्की चीज नहीं, एक प्रक्रिया है।
सही।
तीसरा, समय और इतिहास के साथ इसका रिश्ता जटिल है। ये सिर्फ अतीत बताता नहीं बल्कि सवाल पूछता है कि हम अतीत को जानते कैसे हैं। ये सदमे और स्मृति से जूझता है, कहानी कहने के तरीकों पर ही सवाल उठाता है, वो इतिहास लेखन मेटाफिक्शन वाली बात।
चौथा, टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ कहानी का विषय नहीं है बल्कि कहानी कैसे कही जाती है उस तरीके को भी बदल रही है, हमारे सोचने के ढंग को भी। हाँ, और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वो नैतिक मोड़। कथा साहित्य अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक सोच विचार, सहानुभूति और दूसरे को समझने का एक मंच बन गया है।
ये हमें मुश्किल नैतिक सवालों पर सोचने और अपनी नैतिक समझ को विकसित करने का मौका देता है।
बिल्कुल, और इसे हम भारतीय संदर्भ में भी देख सकते हैं, कैसे यहाँ की कहानियाँ भारत जैसे विविधता भरे समाज में अलग अलग समुदायों के अनुभवों, उनके नैतिक द्वंद्वों और नज़रियों को समझने में हमारी मदद करती हैं।
ईगल स्टोन के विचारों को समझने के बाद लगता है कि उनके पास चीज़ों को कहने का एक बहुत यादगार तरीका है। चलिए उनकी किताबों से निकले कुछ मुख्य विचारों को साझा करते हैं जिन्हें हमने अपनी इस चर्चा में समझा है।
जरूर। पहला विचार ये हो सकता है, समकालीन कथा साहित्य सिर्फ अब नहीं लिखा गया है, ये केवल अब लिखा जा सकता था।
हाँ, ये इस बात पर जोर देता है कि ये साहित्य हमारे आज के अनोखे हालात की सीधी पैदाइश है।
बिल्कुल। दूसरा विचार, ये साहित्य दुनिया को दिखाने से इनकार नहीं करता बल्कि इस पर दोबारा सोचता है कि आज की दुनिया में दिखाने का मतलब क्या है।
ये इशारा करता है कि कैसे आज के लेखक सूचनाओं के सैलाब, वर्चुअल रियलिटी के दौर में सच्चाई को पकड़ने के नए रास्ते तलाश रहे हैं।
सही। तीसरा विचार,
पढ़ना एक नैतिक सामना है, ये हमें दूसरे के नजरिए और अनुभव के प्रति जवाबदेह बनाता है।
ये पढ़ने के गहरे नैतिक पहलू को उजागर करता है, ये सिर्फ कहानी जानना नहीं, सहानुभूति और जिम्मेदारी का अभ्यास भी है।
और चौथा, यह साहित्य सांस्कृतिक चिकित्सा की तरह काम कर सकता है, जो हमें सामूहिक सदमों को समझने और उनसे उबरने में मदद करता है।
ये कथा साहित्य की सामाजिक भूमिका को रेखांकित करता है, खासकर मुश्किल इतिहास या त्रासदियों से जूझने में।
ठीक है, ये सब सिद्धांत तो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आम पाठक के लिए या हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों का क्या मतलब है? इन्हें समझने से हमें क्या फायदा होगा?
सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये हमें ज्यादा समझदार और गहरे पाठक बनाता है।
वो कैसे?
जब हम कोई आज का उपन्यास पढ़ेंगे तो हम सिर्फ कहानी के पीछे नहीं भागेंगे, हम ये भी सोच पाएंगे कि लेखक ने कहानी को इस तरह से क्यों कहा है, उसकी शैली, उसके विषय, उसकी संरचना, इनके पीछे क्या सोच हो सकती है।
हाँ,
ये हमारी बुक क्लब की चर्चाओं को या अकेले में पढ़ने के अनुभव को कहीं ज्यादा रिच बना सकता है।
हाँ, ये तो है, और शायद ये हमारी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को भी बेहतर बनाता है।
बिल्कुल,
जब हम ये समझने लगते हैं कि कहानियाँ सिर्फ उपन्यास नहीं बल्कि खबरें, विज्ञापन, नेताओं के भाषण भी कैसे रची जाती हैं, तो हम हर तरह के नैरेटिव को ज्यादा ध्यान से और सवालिया नज़र से देखे लगते हैं।
बिल्कुल,
और सहानुभूति वाली बात भी बहुत अहम है। किरदारों के जरिए हम ऐसे लोगों की जिंदगी और नज़रिए को समझ पाते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं।
हाँ, भारत जैसे देश में तो ये और भी जरूरी है। हाँ, जहाँ इतनी विविधता है, साहित्य हमें दूसरों की दुनिया में झांकने का, उनकी खुशियों और दुखों को महसूस करने का मौका देता है। ये हमारी नैतिक कल्पना को खुराक देता है।
हाँ, और आखिर में ये सब हमें अपने आज के समाज और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
सही बात है।
जो मुद्दे, जो चिंताएं हमें आज के उपन्यासों में दिखती हैं, पहचान का संकट, तकनीक का असर, इतिहास का बोझ, पर्यावरण की फिक्र, वो अक्सर हमारे समाज की गहरी चिंताओं का ही अक्स होती हैं। तो उपन्यास हमें हमारे समय के बारे में सोचने के लिए एक भाषा और एक फ्रेमवर्क देते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि कथा साहित्य कितना लचीला और जिंदा है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि उपन्यास मर रहा है, लेकिन ईगलस्टोन के नज़रिए से देखें तो लगता है ये मर नहीं रहा, ये तो आज के बड़े और मुश्किल सवालों से जूझने के लिए लगातार खुद को बदल रहा है, नए रूप धर रहा है।
और मेरे लिए सबसे ज्यादा असरदार विचार ये है कि पढ़ना हमारी कल्पना के लिए एक नैतिक कसरत है। ये सिर्फ जानकारी हासिल करना या मनोरंजन पाना नहीं है, यह हमें एक इंसान के तौर पर बेहतर बनने में, दूसरों के प्रति और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद कर सकता है।
तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर समकालीन कथा साहित्य लगातार हमारी जटिल सच्चाइयों और नैतिक चुनौतियों को पकड़ने के नए तरीके खोज रहा है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं?
अच्छा सवाल है।
भविष्य में कथा साहित्य उन चुनौतियों से जूझने के लिए कौन से नए रूप ले सकता है जिन्हें शायद हमने अभी पूरी तरह समझा भी नहीं है? जैसे क्या क्लाइमेट चेंज के और गहरे प्रभावों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनने वाले समाज को बयान करने के लिए हमें कहानी कहने के बिल्कुल नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।